सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जे श्रीवास्तव।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है और उसमें एक बेहद इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन पूरी दुनिया के सामने आई है। ब्रिक्स समिट की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें बनी रहती हैं। इसके क्या मायने हैं ग्लोबल साउथ के लिए, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और खासकर हिंदुस्तान के बाकी देशों से रिश्तों के लिए। इसके जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो कितने जरूरी हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा जी। वाधवा जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
ब्रिक्स डिक्लेरेशन पर आपकी क्या विचार हैं, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या मायने हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और एक वैश्विक समुदाय के लिए?
ये बहुत ही व्यापक एक समिट डिक्लेरेशन इस बार निकला है ब्रिक्स में से। 32 पन्नों का एक जो डिक्लेरेशन है उसमें विश्व के बहुत सारे मुद्दे कवर किए गए हैं और इन मुद्दों पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले विश्व में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके ऊपर काफी विस्तार से बातें करी गई हैं। वो इसलिए है क्योंकि ग्लोबल साउथ के ऊपर केंद्रित ये जो समिट रही है उसमें ग्लोबल साउथ के जो विषय हैं वो इन सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है, वो विश्व में जो ऑर्डर है उसमें किस तरह से उनकी जो वॉइस है उसको आगे ज्यादा बुलंद किया जाए। तो जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमने देखा है कि ग्लोबल साउथ को नजरअंदाज किया गया है इतिहास में और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी उतनी नहीं हो पाई है जितने की प्रॉमिस की गई थी। उसके चलते जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं जिसके लिए लेंडिंग बहुत जरूरी होती है, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस है, उसमें जो पैसा ग्लोबल साउथ के हक में आना चाहिए वो आ नहीं पाया है। हालांकि जो कॉप के जो मीटिंग्स रहे हैं और जो क्लाइमेट चेंज के मीटिंग रहे हैं उन सभी में एक आम सहमति ये बनी थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए क्लाइमेट फाइनेंस ग्लोबल साउथ को मुहैया कराया जाए। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, जो दूसरे गवर्नेंस के मुद्दे हैं विश्व भर में, जैसे कि WTO है, हम देख रहे हैं कि यूनिलैटरल जो टैरिफ्स यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लगाए गए हैं और जो आर्बिट्रेशन की जो मैकेनिज्म्स रहे हैं WTO के तहत, डिस्प्यूट्स के तहत, वो सब ग्लोबल साउथ के लिए अब अवेलेबल नहीं है। तो इसके चलते ग्लोबल साउथ को ये बहुत तकलीफ दे फेज से गुजरना पड़ रहा है और जब तक उनकी जो फीलिंग्स हैं वो इस कम्युनिके में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं तो G7, G20 जैसे जो बड़े संगठन हैं उसमें भी उनकी जो फीलिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। तीसरी बात, हमने देखा है कि दुनिया भर में जो हेल्थ के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य से लेकर पैंडेमिक से लेकर अभी तक, उन सभी में हालांकि आम सहमति बनी थी कि ग्लोबल साउथ को अफोर्डेबल मेडिसिन मुहैया कराया जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया है क्योंकि कुछ देश जो विकसित देश हैं मेडिसिन और वैक्सीन के ऊपर अपनी मोनोपोली चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है दुनिया भर में वो अपने दाम घटाए नहीं और इसके चलते ग्लोबल साउथ को जो बेनिफिट आना था वो WTO के तहत नहीं आ पाया है और हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इस पर सहमति बन चुकी थी। चौथी बात, सबसे बड़ी बात ये रही है कि क्लाइमेट चेंज, छोटे जो देश हैं उनके लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल मुद्दा है और उन्होंने देखा है कि जो भी प्रोमिसेस किए गए थे कि विकसित देश और बाकी के जो विकासशील देश हैं वो साथ मिलकर इस पर काम करेंगे और इक्विटेबल जो बर्डन शेयरिंग है वो आगे चलकर दोनों के हित में होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है आजकल उसने क्लाइमेट चेंज से अपना पल्ला झाड़ लिया है और अपनी कोई कंट्रीब्यूशन उनकी इसमें नहीं है। तो इसके चलते ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जो छोटे देश हैं, उनको अपने आप के बूते पर खड़ा होना पड़ेगा और इसी के चलते इस डिक्लेरेशन में काफी सारे ऐसे विचार प्रकट किए गए हैं। फिर कुछ दूसरे मुद्दे हैं, जैसे भारत की तरफ से आतंकवाद का मुद्दा है, काउंटर टेररिज्म का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का मुद्दा है, वो भारत ने इस पर जोर देकर उठाया है और इसके ऊपर एक काफी आम सहमति बनी है और ग्लोबल जो काउंटर टेररिज्म की जो ट्रीटी है उसके ऊपर भी इसमें इस कम्युनिके में एक रेफरेंस है। काफी सालों से हमने देखा था कि इस तरह का रेफरेंस, इतना स्ट्रांग रेफरेंस किसी ग्लोबल कम्युनिटी में नहीं आ पाया, लेकिन इस बार भारत के जो नेगोशिएटर्स थे उन्होंने इसको इंश्योर किया है कि इसमें ये कम्युनिके में ये रिफ्लेक्ट हो सके। और बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे थे जो कई दिनों से ग्लोबल साउथ के जहन में थे, जैसे कि पीस और सिक्योरिटी का मुद्दा है, उसमें जो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके चलते जो दुनिया भर में सप्लाई चेन की शॉर्टेजेस हैं, उसके ऊपर भी ग्लोबल साउथ में काफी चिंता है। तो उन सभी मुद्दों पर इस कम्युनिके में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए।
विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की।
ऑन द सेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइंड दैट टेररिज्म वाज अ ग्रेव थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही नोटेड दैट ऑल द लीडर्स हैव कंडेम्ड पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। ही अंडरलाइंड दैट द अटैक द पहलगाम टेरर अटैक is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms.
सचिव श्री रवि ने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ग्लोबल साउथ के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द सेशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीस एंड सिक्योरिटी वेयर ही रीअफर्म्ड इंडियाज कमिटमेंट टू एनहांसिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ही नोटेड The developing countries require greater support for sustainable development in terms of access to climate finance and technology. He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank and the WTO, must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times.
वर्धा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ये एक अहम मुद्दा उठाया ब्रिक्स समिट के माध्यम से कि चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे सप्लाई चेन हो, कोई भी देश इन चीजों को अपने खुद के मतलब के लिए वेपनाइज ना कर पाए, उसको एक हथियार के तौर पे दूसरे देश के विरुद्ध इस्तेमाल ना कर पाए। ये कितना जरूरी है कि सभी देश इस पर सहमति जताएं और इसी तरीके से आगे काम करें, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब भी टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म की बात होती है, बहुत आसान होता है पल्ला झाड़ देना कि हमने कुछ नहीं किया कुछ देशों द्वारा, और फिर उन्हीं देशों को बहुत आसानी से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाती है।
इस बार फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म और कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म के ऊपर प्रधानमंत्री ने काफी बल देकर एक वक्तव्य दिया है, जो अब उनकी जो स्टेटमेंट है उसे अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने साफ कहा है कि टेररिस्ट जो विक्टिम है, एक तो विक्टिम और जो पर्पेट्रेटर है उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो उभर कर सामने आने चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो देश टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, जो टेररिस्ट को पनाह देते हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने इसको स्पष्ट किया है जो भारत का जो स्टैंड रहा है टेररिज्म के ऊपर, और ये उसके बाद उसके चलते ये जो कम्युनिके है, जो जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें भी बहुत अहम तरीके से टेररिज्म की बात उठाई गई।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि AI फॉर ऑल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब नए जमाने की चीज है और आगे आने वाले जमाने में और ज्यादा व्यापक रूप से फैलेगी, वो सभी के लिए होनी चाहिए। इस बात को नहीं देखना चाहिए कि कौन अमीर है कौन गरीब, सभी के लिए AI का प्रयोग किया जाना चाहिए, इंसानियत के लिए किया जाना चाहिए। ये कितना जरूरी होगा आगे आने वाले वक्त में।
तो जैसे हमने कि देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों जो को चेयर कर रहे थे AI की जो समिट थी, उसमें JD वांस जो वाइस प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कहा था कि जो AI है उसको, जो AI की कंपनीज है जो उसको इनोवेट करती है, उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये ग्लोबल साउथ की राम राय नहीं है, क्योंकि उनके पास इस तरह के साधन नहीं है, और जो पॉलिसी AI के ऊपर बनेगी वो इस तरह की बननी चाहिए कि सभी के लिए ये लाभदायक हो, और वो तभी हो सकता है कि जब जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जो उसमें अपना फायदा देखती हैं वो फायदा देखना छोड़ दें। तो भारत का यही स्टैंड रहा है और रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ भारत चला है।
बिल्कुल वाधवा जी, वुमेन बिजनेस अलायंस ने एक बेहद अहम रोल निभाया है और इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत जोर दे के सबके सामने कहा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल का एक ऐसा ओहदा है कि बहुत सारे मुद्दों को वो इफेक्ट कर सकता है, बहुत सारे मुद्दों पर प्रभाव डाल सकता है। कितने जरूरी हैं ये दोनों चीजें, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस, और आगे आने वाले वक्त में इनकी क्या अहमियत होगी?
हमने पहली बार देखा है कि इस समय के रनअप के तहत तीन अलग अलग तरह के जो ग्रुप बनाए गए हैं, एक तो बिजनेस अलायंस जो ग्रुप है और वुमेन्स का जो स्पेशल ग्रुप है बिजनेस वुमेन का, और उसके चलते एक सिविल सोसाइटी का भी ग्रुप बनाया गया है। इन तीनों के विचार महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जो विश्व में जो मुद्दे जो कि इस कम्युनिके में हमें देखने को मिले हैं उन सब पर इन सब के विचार भी लिए गए हैं, और ये पहली बार हुआ है कि इस तरह के विचार सम्मिलित किए गए हैं, और जो आगे चलकर किस तरह से जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में या फिर एआई के क्षेत्र में कंपनियां किस तरह से उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी आ जाता है, तो इसलिए उनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और हमने देखा है कि इसके चलते जो कम्युनिके है ये परिपूर्ण एक कम्युनिके बना है इस बार।
वाधवा जी, हमारे सुनने वालों को आप समझाएं कि किस तरीके से ब्रिक्स के जो देश हैं और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जो सदस्य हैं जिनको न्योता दिया गया है, वो इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी अहमियत रखते हैं, साथ ही साथ उनकी अपनी विकास दर बढ़ाने के लिए भी ये देश कितने जरूरी हैं, और अब जो समय है जिसमें कुछ अनसर्टनिटीज हमारे सामने आई हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका फिलहाल हम कोई हल नहीं देख पा रहे, उनकी वजह से कितना ज्यादा असर पड़ रहा है निवेशकों पर, स्टेक होल्डर्स पर, और साथ ही साथ उन देशों पर जिनको वाकई इस वक्त कुछ जरूरी संसाधनों की जरूरत है और ग्लोबल साउथ को नजरअंदाज करने की वजह से उन तक वो संसाधन नहीं पहुंच रहे।
ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि ब्रिक्स ओरिजिनली तो चार देशों का एक समूह था, उसके बाद साउथ अफ्रीका जब से इसमें जुड़ा है 2009 में तो पांच बड़े देश इसमें जुड़ गए। ब्रिक्स के देशों जो ओरिजिनल देश हैं उनको देखा जाए तो वो कोई मामूली देश नहीं है, उनके पास साधन है, उनके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है और उनका ट्रेड भी काफी बढ़ा हुआ है पूरे विश्व के साथ में। पर अब हमने देखा है कि अब ये जो समूह है ये 11 देशों का हो चुका है, और इस सम्मेलन में हमने बहुत सारे ऑब्जर्वर्स भी इसमें देखे हैं कि जो उन्होंने एंटर किया है। तो अगर हम 11 देशों का समूह ही देख लें तो इसमें साफ है कि विश्वभर की जो 40% पॉपुलेशन है, 35% जीडीपी है और करीब 25% इंटरनेशनल ट्रेड है, वो सब इन देशों में से ही आता है, और काफी सारे ऐसे देश हैं जिनके पास की ऑयल और गैस की कोई कमी नहीं है, तो ये अमीर देश हैं
जी।
और आगे चलकर ये जो विश्व की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनमें इनके विचार बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इनके बिना आगे चलकर कोई प्रगति के आसार मुझे नजर नहीं आते हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दें या चीन को छोड़ दें, चीन भी ब्रिक्स में है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जो अहम देश हैं वो अब ब्रिक्स के देश बनने वाले, जैसे कि भारत है और इंडोनेशिया है और ईरान है जिसके पास भी काफी संसाधन है, और इस तरह के देश ब्रिक्स से जुड़ चुके हैं, तो इनके जो विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे।
वाधवा जी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर आपने इतने विस्तार से इतने अहम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की और आकाशवाणी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में